ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 12 श्लोक संख्या 38। श्री भगवान वाच दुष्टतम विबुधा सृष्टा दुष्टतम विबुधा सृष्टा स्वनिष्ठं आत्मनः स्थितः स्वनिष्ठा आत्मनः स्थितः जन्म स्त्री रूपदा शौरम् जन्म स्त्री रूपया शौरम् कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा दिष्ट्या कल्याण हो त्वं तुम्हारा विबुध सृष्टा हे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ त्वं स्वां अपनी निष्ठां स्थित दशा में आत्मना अपने आप स्थितः स्थित हो जात क्योंकि मैं मेरे स्त्री रूपया स्त्री जैसे स्वरूप से शौरम पर्याप्त मोहित सम्मोहित अपि होते हुए भी अंगा है सिज्जी माया मेरी शक्ति के द्वारा। अनुवाद भगवान ने कहा हे देवताओं में श्रेष्ठ यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो किंतु तुम अपने पद पर स्थित हो अतएव तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य क्योंकि शिव जी समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं अतः वे समस्त भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं वैष्णवानं यथा संभो अतः उनकी आदर्श चरित्र की भगवान ने प्रशंसा की और उन्हें यह कहकर वरदान दिया तुम्हारा कल्याण हो। जब कोई भक्त कुछ कुछ गर्वित हो उठता है तो कभी कभी भगवान भक्त के भ्रम को दूर करने के लिए हम उनके भ्रम को दूर करने के लिए अपनी परम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा पर्याप्त सताए जाने की फान शिव जी ने अपने सामान्य अविचल रूप धारण कर लिया। भक्त की यही स्थिति है। भक्त को किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है 6:22 क्या है, जस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते। उसका पहला क्या है, जंगलत्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी कभी विचलित नहीं होता। ऐसी निराभिमानिता उच्च कोटि के भक्त में ही संभव है, जिनमें भगवान शंभु एक है। कितनी अच्छी शिक्षा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको अप्लाई करें। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथं नीतं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखानितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जंत प्रविष्ट मम वाच मिमं प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्ति धरस्वधाम्ना। अन्य सहस्त चरण श्रवण तुकादिन प्राणं नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। तो किस प्रकार ये संसार माया से व्याप्त है और भगवान स्वयं भी कह रहे हैं कि ये जो मेरी माया शक्ति है कितनी प्रबल है और जिनको पार करना कोई भी साधक के लिए बड़ा कठिन है। तो इसके ये दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है कि बड़े बड़े देवताओं को भी शिव जैसे जो काम को जीतने वाले हैं वो भी भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं। और इस माया की वजह से हम परम पुरुष की जो परमेश्वरता है वा उच्च स्थिति है उसको हम समझ नहीं पाते हैं और भगवान की परम श्रेष्ठता को न समझने के कारण हम उनकी शरणागत नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रसंग है इसको कौन प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन किसको सुना रहे हैं कथा? ये प्रसंग किसके साथ जुड़ा है? कौन किसको बता रहे हैं? डायरेक्ट टेलीकास्ट कौन किसको कर रहे हैं? गुड, ये प्रसंग डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, तो कहें कि देखो देवता लोग तो बहुत खुश हो गए जब उनको अमृत प्राप्त हुआ, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों के साथ छल किए और देवताओं को अमृत पिला दिए। तो देवता लोग बहुत खुश हो गए कि प्रभु ने हमारे सारे कार्य कर दिए। लेकिन शिवजी दो अमृत से वंचित रह गए क्योंकि शिवजी को तो जहर पीना पड़ा था, है कि नहीं? ये लोग अमृत पी लिया, शिवजी जहर पिए थे। क्योंकि देखो एक तो ये अमृत से वंचित हुआ और भगवान स्वयं प्रकट हुए इस दर्शन अमृत से भी मैं वंचित हो गया, तो दोनों तरफ से मेरा नुकसान हुआ। तो शिवजी को जब ये मैसेज मिला, संदेश प्राप्त हुआ, तो कह अच्छा कैसे भगवान ने इसे स्त्री रूप धारण कर लिया? मैं तो जितना ही भगवान की मेरे प्रभु के रूप को देखा हूं पुरुष रूप में देखा हूं, लेकिन भगवान स्त्री रूप धारण करते हैं, क्योंकि भगवान तो पुरुष है ना। भगवत गीता में भगवान को क्या कहा गया है? अतोस्मि लोको वेदेच प्रतिते पुरुषोत्तम, तो पुरुष है, पुरुष में उत्तम है, लेकिन स्त्री रूप कैसे धारण किए? उनकी मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई और देखने की भी लालसा उत्पन्न हुई। तो शिव जी अपने पत्नी के साथ आए, कहे आप भी थोड़ा देख लीजिए, जान करके हम देख लेंगे। तो बैलगाड़ी में तो नहीं, बैल पर लेके आए बैठा करके। तो आकर के भगवान से प्रार्थना की, अब ये भी हुआ था जस्ट, और भगवान उस रूप को अपहृत करके छिपा करके फिर अपने मूल रूप में आ गए थे। तो शिव जी ने प्रार्थना की कि प्रभु कितने सुंदर रूप है, हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं। तो भगवान ने बहुत समझाया, महादेव आप क्यों देखना चाहते हैं? ये तो कामुक व्यक्ति जैसे असुर जैसे कामुक व्यक्ति के लिए ही रूप दिखाया था, और दूसरे देवता भी विचलित नहीं हुए इस रूप को देखकर, मोहित नहीं हुए, आप क्यों देखना चाहते हो? तो प्रभु थोड़े से दिखा दीजिए ना, मेरे रिक्वेस्ट है, मैं देखा नहीं। अच्छा, तो बहुत जब प्रार्थना की, चलो आप देखना चाहते हैं लेकिन सावधान रहना, मेरी गलती नहीं मानना, आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो भगवान विष्णु तुरंत शिव जी के सामने से प्रकट हो गए और वो दोनों ढूंढने लगे, रे प्रभु कहाँ चल गए, कहाँ चल गए? और भगवान ऐसे ही उनकी सामने से उज्जवल होकर की एक पेड़ के नीचे देखे क्या कर रहे हैं, दोनों खेल रहे। तो शिव जी कह रहे, देखिए ध्यान दृष्टि जो शिव जी जिनको एकाग्र चित्त से जिनको ध्यान करते हैं, ध्यान अवस्थित तो तदगते न मनसा पश्यन्ति च योगिनः, योगी में सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी शिव जी का ध्यान कहां पर आकर्षित हो गया? हाँ, एक स्त्री। और शिव जी देखते रहे, अरे ये तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा गेंद खेल रही है, हाँ ऐसे तो कोई प्लेयर नहीं है इतने सुंदर गेंद खेलने वाले। और उस समय भगवान अपने माया को फैलाए, हवा की झोंक से वस्त्र उड़ गया। और भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो कि मेरी माया कितनी प्रबल है, कितनी शक्तिशाली है, हाँ वो नग्न शरीर को ऐसे दिखा करके शिव जी के सामने तो तुरंत भागने लगे। और उसके पहले जब गेंद खेल रहे थे तब बार बार शिव जी की ओर नजर डाल रहे थे, तो शिव जी ने सोचा कि ये स्त्री मुझसे ही प्रेम करती है, हालांकि जगत वंदनिया माता पार्वती उनके साथ में है, फिर भी वो आकर्षित हो गए और इतनी काम की बस में हो गए। कहते जैसे एक हाथी मादा हाथी हाथिनी के पीछे दौड़ती है, क्योंकि हाथी के अंदर ज्यादा ही काम बसना भरी हुई रहती है। तो शिव जी की स्थिति को एक हाथी के साथ तुलना की, इतनी हो गई मूढ़ दशा को प्राप्त कर ले काम की शक्ति देखी। और शिव जी दौड़ने लगे, उनको पकड़ने के बहुत प्रयास किए और भगवान इस रूप को धारण कर दौड़ रहे फिर छिप गए। और शिव जी इतनी कामुकता के आवेश में हो गए, जाकर तुरंत तो उनको जाकर के आलिंगन किए और आलिंगन करने की तो शिव जी की जो शक्ति है वो खेल हो गया। तो उसके बाद शिव जी जब अपने स्थिति पर आ गए, शिव जी अपने स्थिति तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति को बोध हो गए। एक्चुअली जो भगवान की स्थिति को जानना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हाँ भक्ति करना चाहिए। भगवत गीता के 8वां अध्याय में है, अगर कोई भगवान की परम पद को समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, हाँ ब्रह्मचर्यम् चरन्ते, वो श्लोक क्या है कौन बता सकता है, अध्याय की 11वां नंबर श्लोक, जदि छन्तो ब्रह्म जदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति जद्यत् तयो वीतरागा जदि छन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। उस पद को प्राप्त करना चाहते हो, बजाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, यदि इच्छंत यदि आपको चाह है इस ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना चाहिए, अर्थात विषय वासना से मन को बचा कर रखना चाहिए। परंतु शिव जी के उल्टी दशा है, फिर भी वो भगवान की स्थिति को जान लिया। शिव जी की पत्नी माया स्वरूपिणी है, फिर भी वो आकर्षित हो गए, ये कैसे है। स्वयं माया देवी जो 3 लोक को आकर्षित करती हैं, त्रिभीर गुणर मयूर भावे अभी सर्वमिदम जगत मोहित नाभिजानाति मामेभ्यं परमापय, और वो माया शक्ति उनके पास ही बैठी हैं साथ में, और शिव जी कंधे पर हाथ रखे, फिर भी वो माया शक्ति में कैसे आकर्षित हो गए। तो यही है, वो कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, सॉरी भगवान कह रहे हैं कि स्त्री रूपयम में माया, स्त्री रूप में मेरी माया है। देखें इसके शक्ति को, देखें जो मम माया है यही अपने स्वरूप माया है, नहीं तो शिव जी इस महामाया के द्वारा आकर्षित होने वाला नहीं है। इनकी पत्नी तो है महामाया, विवाह करने के लिए आए, नारद जी आकर के सेटल किए विवाह, फिर भी शिव जी का मन नहीं था। बरात भी आया था, आप सुने थे कैसे बरात आया था शिव जी का, सास ने मना कर दिया, मैना ने, विवाह नहीं हो सकता। तो फिर शिव जी कैसे आकर्षित हो गए? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मद रूप दर्शन मोहितम इति चह चचाणम इति अपहास, कहते ये जो मेरी रूप को ही दर्शन किए, माया रूप नहीं है और ये मेरी स्वरूपभूत माया है, ये बहिरंगा माया नहीं है, स्त्री रूपया और मैं माया, तो मम और मैं, यह षष्ठी में आता है संबंध में कि मेरी है जिसको हम अपने अधीन में ये करना चाहते हैं। और कुछ चीज होता है कि जैसे मेरी संबंध में है, इसके लिए भी षष्ठी प्रयोग होता है, जैसे पत्नी की प्रॉपर्टी, क्योंकि पत्नी मेरी है तो पत्नी की प्रॉपर्टी भी मेरी है, परंतु कोर्ट केस करके पत्नी भी अलग ले सकती है। तो कभी कभी बहिरंग माया, भगवान कहते हैं ये तो मेरी माया तो है, लेकिन कौन सा माया है? भिन्ना, भिन्न माया, लेकिन अभिन्न माया को ये बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते हैं। मुह्यंती जत सूर्य, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए, मैं बहुत प्रकार से आपको मोहित करने के लिए प्रयास किया, कैसे? सौर्यम, बहुत प्रकार से, फिर भी आप विचलित नहीं हुए। इसलिए भगवान कह रहे हैं विबुध श्रेष्ठ, विबुध का मतलब है देवता, तो देवताओं में श्रेष्ठ देव कौन है? देवता है। और शिव जी को क्या कहा जाता है? महादेव, क्योंकि वह देवता में श्रेष्ठ है। कहते विबुध श्रेष्ठ त्वाम दिष्ट, आपकी कल्याण हो। तो शिव जी कहे किस बात पर कल्याण? बहुत तक घुमाए फिराए फिर कहते आपकी कल्याण हो, कहते हां इसलिए, किस लिए? ना मोहित अपि, इसलिए आपका कल्याण हो कि मैंने आपको जत, पहला ना जत, इसलिए है क्योंकि मैं स्त्री रूपया, स्त्री रूप को धारण करके माया और माया की शक्ति के द्वारा मोहित अपि, मैं आपको बहुत मोहित किया, फिर भी मोहित अपि मतलब फिर भी स्वयं आत्मनिष्ठया स्थित, फिर भी आप अपने स्वरूप स्थित आत्मा निष्ठया। तो निष्ठा शब्द की व्याख्या वीर राघव आचार्य कहते हैं, अपनी स्वरूप स्थिति अहंकार रहित, प्रकृति व काम विकार से रहित निष्ठा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति उत्थ दैवी मया निर अहंकारत्व इति अर्थ, अर्थात वो व्यक्ति इस निष्ठा को प्राप्त कर सकता है जो अहंकार रहती है, दो प्रकार के अहंकार उत्पन्न होता है, एक स्थूल शरीर भूत अहंकार और दूसरा है सूक्ष्म शरीर युक्त अहंकार। जैसे मान प्रतिष्ठा आदि ये सूक्ष्म शरीर के अहंकार है, धन स्वजन संबंधी आदि सुंदरता आदि ये स्थूल शरीर युक्त अहंकार है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जब दैन्यमयी भक्ति उत्पन्न होती है, ये अहंकार के दोनों प्रकार के अहंकार की विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भक्ति उत्थ दैन्यमयी, तो भक्ति की प्रकाश व भक्ति की विकास दो चीज से। यदि हमारे अंदर भक्ति वृद्धि होती है, इसके सिम्टम्स क्या है? दैन्य आत्मा विभेद, ये है भक्ति की विकास के लक्षण है और प्रकाश होगा उनके व्यवहार में, उनके आचरण में। जो कहते ना काम का भाषा स्थित प्रक्रिया का भाषा, लक्षण क्या? तो ये सब लक्षण है। जब भक्ति उत्था दैन्यमयी अकिंचन अकिंचन भक्ति उत्पन्न होती है, तो उसमें साधक अपनी स्थिति को समझ जाता है। यही शिव जी क्या कर रहे थे, पत्नी को गोद में लेकर के, पार्वती को गोद में लेकर के भागवतम सप्ताह कर रहे थे, कथा कर रहे थे, है ना, मुनि ऋषि के सामने, और चित्रकेतु महाराज उड़ान में जाकर के पहुंचे वहां और देख करके उनको अपमान किए, मतलब उनकी प्रशंसा किए परोक्ष में, कि ऐसी स्थिति जो जन सामान्य की साधारण के सामने ही इस प्रकार व्यवहार करते, साधारण लोग ऐसे नहीं कर सकते, साधारण लोग भी नहीं करते, इसका मतलब कि साधारण लोग का बस में नहीं है ऐसा, ये कैसे हो? वास्तव में पड़ गए। जब हम कहते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे ना पूछे, उसका पहले क्या है कि जिसके अंदर ऐसे ही भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, उस वैष्णव की दैन्यमयी भक्ति, जो 11 स्कंध में है, एक श्लोक क्या है, जो कभी कभी रोता है, हंसता है, पागल की तरह नाचता है, क्या है वो श्लोक? बताइए कैसे प्रारंभ होता है श्लोक? विद्वान जन एवं व्रतस्वप्रिय नाम कृत्या जातानु रागव द्रुतचित्त उच्चै हसन्ति रौति रदन्ति उन्माद नृत्यन्ति लोकवाह्य। वो दिखता नहीं है कि लोग हंसेंगे मेरे नाच देख करके, पागल देख करके पत्थर फेंकेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने ये व्रत लिया है, इमिटेशन किया था हरिदास ठाकुर के नृत्य को देख करके, सब ब्राह्मण ने पीटा है, बहुत जोर से पीटा है। भक्ति कभी इमिटेशन नहीं होता है, भक्ति के विकास होते ही भक्ति के प्रकाश आता है। लाइट लगा करके प्रकाश नहीं कर सकते, वो अपने आप है। हाँ, भक्ति अंदर की तेज है, इसलिए व्रत जो है दृढ़ व्रता, तो इस प्रकार जो व्रत लेता है, एवं व्रत शिव जी की कौन से व्रत है जिससे कि उनका निष्ठा अविचलती है, स्वाम निष्ठा आत्मनानुष्ठिता, उनके कौन से व्रत है? वो एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना नहीं चाहते, पत्नी को रिजेक्ट कर दिए, है ना, पत्नी को रिजेक्ट कर दिए कि तुम मेरे प्रभु को परीक्षा लेने के लिए गए, परंतु प्रभु के प्रति अपने निष्ठा को त्याग नहीं किया। इसलिए भगवान कहते त्याग ही पुरुष व्याघ्रम त्रिविधम संप्रकृतित। जो इसी प्रकार त्याग करता है परमार्थ को प्राप्त करने के लिए, उस त्याग उनको प्रसिद्धि प्रदान करता है। विदुर जी ने इस प्रकार अपने नीति में सीखा कि यदि परिवार का कल्याण होता है तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, और यदि एक गांव की हित होता है तो परिवार के स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, और जिसमें पूरी समाज के कल्याण होता है तो गांव के स्वार्थ को त्याग कर देना चाहिए, और जहां पूरी विश्व की कल्याण है तो वहां अपना देश के स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, परंतु जहां आत्म कल्याण के प्रश्न है तो सबको छोड़कर के आत्म कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। परार्थ निष्ठा यह है वास्तविक स्वार्थ और परार्थ में यह है, हाँ? कि भिक्षु ब्राह्मण ने ये जो व्रत लिया था वो परार्थ निष्ठा, यही कल्याण कर सकता है। हाँ, जब कहे कि नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया या बहिर्थ मानी प्रहलाद जी कह रहे, स्व अर्थ, स्व का मतलब है आत्मा, स्व का मतलब धन नहीं है, स्व के मतलब संबंध नहीं है, स्वजन नहीं है, स्व शब्द का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा की अर्थ प्रयोजन को जो समझता है वही है स्वार्थ। इसलिए जो नहीं समझ पाता है तो क्या है ना, भगवान की बहिरंगा माया के द्वारा वो निश्चित रूप से आकर्षित है, भगवान उनको बांध के रखे। तो कपिल देव ने इस बात को समझाए हैं कि किस प्रकार इस माया से हम बच सकते हैं। 31वां अध्याय तीसरा स्कंध, वो कह रहे कि जब जीव मां के गर्भ में आता है और कितनी यातना को प्राप्त करता है, और मल और मूत्र की गड्ढे से वो कीड़े के समान रहकर जो बाहर निकलता है, विविध ताप उस फसल पीड़ा में उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है, भगवान के साथ जो संबंध है ये संबंध की स्मृति नष्ट हो जाती है, और फिर वो अपने शरीर रूपी जो बंधन को, कर्म बंधन को लेकर जब जन्म लेता है, वो कहते हैं ददत क्लेशम अविद्या कर्म बंधन, अविद्या क्लेश और कर्म बंधन को लेकर के जन्म लेता है, और फिर जब जन्म लेता है उस शरीर के डिजायर क्या रहता है, सिसना उदर कृतोद्यमी जब असत पथि पुनः, इस रास्ता में चलता है ये शरीर, किस रास्ता में चलता है, पेट को भोजन देना है और शिष्ण उपस्थित वेग को, और इसको ही वो अपना स्वार्थ मानता है और इसको ही वो अपने सुख ही मानता है। तो इसी प्रकार आस्तित रमते जंतु स्तमा विशति पूर्ववत, इस प्रकार जो जीवात्मा है इनको जंतु कहा जाता है, क्योंकि एक तो एक जनता में पड़ा रहता है, जैसे बाघ कितने भी बलशाली हो, हाँ, उसको आप केज में डाल दो और उत्पटन नहीं करेगा, बस उसके अंदर ही कर सकता है। तो जीवात्मा इसी प्रकार जब शरीर में आता है, हाँ, तो निश्चित रूप से जो कर्म के रज्जु है उसको बांध करके उसको वहीं उसी में डाल देता है, क्योंकि मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, जरा पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, जरा मरण मुख्याय मामा श्रीता, भगवान की शरणागति की बिना मृत्यु और बुढ़ापा पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए शरीर एक जनता है जिसमें बुढ़ापा और मृत्यु निश्चित रूप से। इसलिए जंतु विसति पूर्ववत। और जो इसी प्रकार शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए, है ना, क्या है चैतन्य चरितमृत गोपद जिहर लालसा घेनी इति उति धाय, भंडारा चल रहा है चलो उधर खा लेंगे, अच्छा पकवान है, दक्षिणा भी मिलेगा, सह दक्षिणम, चलिए दक्षिणी दिशा की ओर यात्रा करता है दक्षिणा का। और भोजन करने के बाद आलस्य आ गया, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, भंडारा में लाइन लगाता है घंटे तक, लेकिन एक घंटा बैठ करके जब नहीं कर सकता है, तो फिर परिणाम क्या होता है, अरे सोने पर धाम में समाधि का फल मिलता है, सो जाता है। और यदि साधु बन के सोए नहीं, गृहस्थ बन के रोए नहीं, तो क्या लाभ है, और कुछ भी पद बनाए हैं। तो नियम बना दिए, खा लो भंडारा, दक्षिणा रखो और सो जाओ, यही है सिद्धि है परमार्थ। तो ऐसे व्यक्ति की शिष्य उदार उदर वाले जिसको पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील है, उनके पास धर्म की 12 चीज नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिए क्या क्या, सत्य, शौच, पवित्रता, दया, मौन, वो बहुत बोलेगा, बुद्धि, श्री धन, ह्री लज्जा, जस, क्षमा, समादमा, मन की संयमता, इंद्रियों की संयमता दोनों है, भग, कितना हो गया, बड़ा हुआ, भग मतलब ऐश्वर्य। तो ये काम के द्वारा ये 12 चीज नष्ट हो जाता है, सुंदरता नष्ट होता है, जो संयम शक्ति नहीं रहेगा मन और इंद्रियों पर, तो शरीर चिंता से सांत्वना, आप देखिए जो वर दिए थे अपने पुत्र को, है ना, इच्छा मृत्यु, लेकिन सत्यवती गंगा जी तो छोड़ के चल गए, कितनी विरक्त हो गए, परंतु सत्यवती को देखकर कि मन इतने विचलित हो गए, दिन पर दिन उनके शरीर में रचने लगे। और दया, दूसरी के प्रति जो दया भाव है, जो उत्साह है प्रचार करने का उत्साह है, वो नष्ट हो जाता है। अब देखिए विचित्र वीर्य था ना, वो राजगर्ज नहीं किया, इतनी संभव में रत रहा, उसको कौन से रोग हुआ, क्षय रोग, राज्य खत्म। तो ये जो 12 चीज हैं, काम वासना प्रबल होने से, वह मिथ्या अहंकार से वशीभूत होने से, शरीर को आत्मा समझने पर, और ये शरीर को अस्तित्व, दोनों प्रकार के शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न है, इस प्रकार हमारी 12 गुण को नष्ट कर देता है। जत संगा जति संख्यम, इसलिए भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि तेसु असंतेसु मूढ़ेसु खंडिता आत्मा स्वसाधुषु संगन्न कुर्जत शौचेसु जोषित पीड़ा मृगेशु च। जोषित स्त्रियों के हाथ में क्रीड़ा मृगेशु नाचने वाला कुत्ता व बंदर बन जाता है। इसी प्रकार असंयमित इंद्रिय वाले हैं, मिथ्या अहंकार में वशीभूत हैं, तो जैसे मादारी बंदर को पकड़ करके चना डालकर बंदर को पकड़ता है ना सुराई में, और पकड़ने के बाद क्या करता है, रस्सी में बांध करके उसको बहुत अच्छा नाच नचाता है, कभी चौकीदार बनाता है, कहता है कि बाबा लोगों को सलाम करो, घूमता है सबको मारता है, चौकीदार बनो, लाठी लेके घूमता है। और वही बंदर आप देखिए कितनी उस्तादी करता था, चश्मा निकाल लेता है, मनी पर्स निकाल लेता है, देखते देखते लोग बिस्कुट देते कहते नहीं बिस्कुट भी नहीं पीता है, फ्रूटी, और दोनों हाथ में दो चाहिए तब फिर गिरा। और जब एक बार पकड़ा गया, देखो सर खत्म हो गया ना उसके हीरो पर, है ना। तो इसी प्रकार जो एक बार इसके अधीन हो जाता है उसको भी कैसे क्रीडाम रगेसु, बंदर और कुत्ते के था, कुत्ता पूछ हिलाते हुए दौड़ता है मालिक के पीछे, कितने प्रसन्न है हमारे साथ दो रोटी के। और कपिल देव कह रहे कि सुनिए, यदि आप सच्चे इंसान बनना चाहते हैं, सज्जन बनना चाहते हैं, इस प्रकार मोह से बचने के लिए क्या करना चाहिए, पहले ये जानो कि कैसे इस संघ से छुटकारा प्राप्त करके साधु के संघ में शामिल हो जाए, नहीं तो इस मोह को काटना बहुत कठिन है। प्रसंगम वजरम पासम आत्मानं कपयो विदो सएव साधु सुकृतं मुक्तद्वारं अपाकृतं सएव साधु सुकृतं। और कोई नहीं है, क्योंकि इस मोह का कभी बुढ़ापा नहीं आता है, सफेद बाल नहीं होता है, हमेशा डाई कर क्लीनिंग करके रखता है पूरा सजा के। अजरम इसको जरा नहीं है, तो कैसे इस मोह को नष्ट कर सकते हैं। तो देखो ये मोह इतनी प्रबल है, न तथास्य भवेत मोहन बंधा बंधना सत अन्य प्रसंगात, और दूसरे प्रसंग में नहीं है, इसलिए कहते प्रसंगम अजरम, कि दोनों के लिए ये जो शरीर के जो चाक चिकन है ये दोनों के लिए है बंधन के कारण, पुरुष स्त्रियों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए। परंतु हम जानने पर भी, सुनने पर भी, समझने पर भी इस माया को तभी तक हम जीत नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, जब तक उस अटैचमेंट को एक शुद्ध वैष्णव और साधु के साथ ज्वाइंट नहीं करते। अर्थात कैसे, मैं इस प्रसंग को बार बार सुनते हुए विचार करते हुए, तत्सुणम विचारणम विपठनम भक्त्या विमुच्येत परम, तब फिर इससे छुटकारा मिलता है। केवल श्रवण से भी नहीं, श्रद्धा पूर्वक श्रवण, फिर उसके बाद उस विषय में चिंतन, और फिर तीसरा स्टेप है अपने जीवन की आचरण। तो प्रारंभ में श्रवण, कहते ये जो संग है बंधनात अन्य प्रसंगात, ये बंधन इतनी भयंकर है, और ये संसार में इतनी बड़ी बंधन नहीं है, बेड़िया नहीं है। कहते हैं ये बंधन में फंसकर की प्रजापति स्वयं दुहितरम दृष्टम तदरूपम धर्षितम, ब्रह्मा जी सृष्टि करता इस रूप को देख करके वो स्वयं इस पद से विचित हो गए, वेद पद से, स्वयं वेद पढ़ने वाले, वेद की प्रवचन करने वाले, चतुर्मुख से चार वेद निकलता है, और हमारे जैसे कोई गाय के गोबर जैसे माइक्रोफोन में बोलते हैं, इनकी क्या स्थिति। ब्रह्मा जी करिए प्रजापति सुख भी तरह, और किसके प्रति आकर्षित हुए, और कोई दूसरे स्त्री के प्रति नहीं, लेडीज अपने पुत्री के प्रति, सरस्वती के प्रति। और जब सरस्वती को ये पता चला कि पिताजी ने ये वेद मर्यादा उल्लंघन करना चाहते हैं, तो तुरंत पिताजी को बचाने के लिए और स्वयं बचने के लिए उन्होंने हिरण की शरीर धारण, हिरनी बन गए। परंतु काम वासना इतनी प्रबल हो गया, ब्रह्मा जी क्या बन गए, हिरण बन करके उनके पीछे पीछे दौड़ गए। रोहित भूतान स्वर्ण धावत रुख्य रूपी हतत्रप, और निर्लज होकर के श्री जो नष्ट हो जाता है लज्जा। यह समाज वास्तव में निर्लज के ऊपर जा रहे, कोई नहीं है सभ्यता किस प्रकार ड्रेस पहनना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कोई संयमता नहीं है, श्रृंखला नहीं है। यह समाज की स्थिति, इसलिए भगवान स्वयं कह रहे कि ये मेरी बहू है जो संसार को बांध के इस प्रकार मचा रहे हैं। बड़म में पश्य मायायम श्रीमज्जा जनितो दिशां जाकरोति पदक्रंतं भ्रूद्विजृंभेण केवलम। यहां शिव जी को कहे दो संबोधन किए हैं, विबुध श्रेष्ठ और अंग है। मेरे प्रिय शिव जी महादेव, आप ऐसे मोहित नहीं हुए, क्योंकि मेरी माया जब दूसरे को मोहित करता है, बहिरंगा माया, ब्रह्मा जी भागे थे। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के लिए नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ा। आप देखो ब्रह्मा जी जिस प्रकार अपने पुत्र के प्रति आकर्षित हो गए, तो मरीच की पुत्र सब कमेंट किए ठीक नहीं है, दादाजी जो कुछ कार्य किए ठीक नहीं। शिव जी ने राइफल भी उठा लिए थे, ये अच्छा नहीं है। हा? ब्रह्मा है, इतना बड़ा मिनिस्टर होकर के इसे कार्य करता है। और इसकी वजह से फिर ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ा। परंतु शिव जी को कह रहे थे, मैं स्वयं आत्मना निष्ठा स्थित, आप अपने स्थिति में, अपने स्वरूप स्थिति में आप स्थित हो गए। ये है कि कैसे जीव अपने स्वरूप स्थिति में रह सकता है जब अपनी स्थिति को समझे। शिव जी जानिए कि मैं तो एक सामान्य बद्ध हूं और मेरे प्रभु कितने महान। ये जो दैन्यता उत्पन्न होती है इससे हम माया से बच सकते हैं। और फिर कहा जाता है कि भगवान की माया बाजू माया शक्ति है कामदेव नर नारायण के ऊपर प्रभावित करने के लिए आए। आप सुने हैं ना कथा कि जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र के अंदर स्पर्धा उत्पन्न हुआ कि मेरे इंद्र कोष्ठ तो न चल जाए, इसलिए उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव कहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक बार जल गया था, अभी नहीं। कहते नहीं नहीं मैं आशीष करूंगा ना, खतरा से बचाऊंगा। चलो मड़े को बुला लिए, अप्सरा को बुला लिए, तो बहुत अच्छा नाच गान हुआ। अप्सरा ने ना डांस किए, मड़े ने बहुत स्प्रे फेंका, बहुत सुगंधी फैलाया, तो नर नारायण ऋषि समझ गए अच्छा कामदेव आया है और किसकी चाल है इंद्र की। तो बहुत समय नाच गीत चला, कामदेव ने बहुत प्रकार के बाण चलाए, पांच बाण है कामदेव के पास। हाँ जो भीष्मदेव रखे थे ना पांच बाण पांडव को मारने के लिए, उसको भी चोरी कर लिए ना भगवान द्रौपदी को भेज करी थी। चप्पल उठाए थे पता है ना, पंजाबी चप्पल को भगवान ने उठाए द्रौपदी के उस पांच बाण को लेने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही प्लान किए थे कि वो सोचेंगे ये दुर्योधन की पत्नी आई है उसको वरदान दे दे, भगवान ने उस माया चलाए थे। तो इसी प्रकार नर नारायण ऋषि भी कामदेव की पांच बाण को फेल कर दिए, अपहरण कर लिए। तो इंद्र सोचा क्या हो गया, ऋषि का भी इतनी ताकत है मैं देखता हूं। तब जब इंद्र जी आए तो भगवान नर नारायण अपने ही शरीर से ऐसे सुंदर सुंदर अप्सराएं उत्पन्न की और कहे कि और चाहे दो चार ले लो, इतने में काम नहीं चलेगा और ले लो। तब फिर इंद्र ने घुटना उठा कर कहा प्रभु माफ कर दीजिए। तो इसी प्रकार जो भगवान के संरक्षण में रहता है हा? तो वो कभी माया से विचलित नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं वैष्णवानां यथा संभु और भगवान कहते नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान बहुत कुछ बताए कि जो ऐसे हाँ जो विचलित नहीं होता है, जंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषव सम दुख सुखम धीर समृतत्वाय कल्पते। हाँ जो धीर है उस अमृत को प्राप्त करता है, परंतु कौन धीर है, कौन इस अमृत को प्राप्त करता है, कौन इस सुख दुख से मान अपमान से विचलित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शस्तु कुंतया स्थित उष्ण सुख दुखदा आगाम अकालीन अनित्यम दांति तिक्षसु। जो तितिक्षसु मतलब जो सहन करने में समर्थ है वो विचलित नहीं होता, और ये सहन करने की समर्थ किसके पास होता है, जो प्रार्थना करता है। सकल सहने गुण दिया मारे निज माने स्व। जो अभिमान से बचने के लिए प्रयास करता है, हम सब डेजिग्नेशन से बंधे हुए हैं इसलिए अभिमान उत्पन्न होता है बाह्य उपाधि, तो इस उपाधि से मुक्त होने के लिए प्रार्थना। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक भगवान की माया से बचता है, और जीव ही हम प्रयास से बच जाते हैं तो भगवान की माया हमको इस प्रकार बंदर जैसे बंद कर देना चाहिए। परंतु नरनारायण ऋषि विचलित नहीं क्योंकि अपने स्वरूप में दे दिया। तो इसलिए शिव जी को कह रहे कि तुम्हारा कल्याण हो दिष्ट और अंग मेरे प्रिय, क्योंकि भगवान जो प्रिय होता है वो ही माया से बच सकता है। भगवान कहते हैं और उनकी प्रगति है क्षिप्र, यही कारण है मैंने शिव जी को कह रहे हैं कि आप अपने स्थिति में जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते। जिन्होंने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया जंग लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं कृत, वो फुल्ली सेटिस्फाइड है और कुछ इच्छा नहीं है चाह नहीं, तब फिर वो विचलित नहीं होता क्योंकि अपने स्थिति पर वो स्थिर, यही है मेरी पोजिशन। लेकिन लक्ष्मी जी स्थित नहीं है, लक्ष्मी जी घमंड लक्ष्मी हूं, लेकिन गोपियां ठीक है, गोबर उठाने वाली है, दही बेचने वाली हम जानते हैं। नलिन नाभ पदार बिंद दासी, तो लक्ष्मी जी दासी तो करने पर भी उनके अंदर अभिमान है, इसलिए भगवान की इस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। चंगल द्वाचा प्रणला बेलबन में बैठी है ना, हाँ सर पर कुछ लिए है कुछ, कोई कह रहे कि मटका व दही बेचने के लिए अभी नहीं कर रहे लेकिन प्राप्त नहीं किए अभी भी। श्री अप्यांगास श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ भगवान के चरण अभिमान। तो जो स्वाभिमान में रहता है वो अपने स्थिति से गिर जाता है। मद रूपम दर्शितम मोहितम इति चचाड़म इति उपहास। शिव जी को इस प्रकार अपमान सहन करना नहीं पड़ा, हालांकि मुनि ऋषि के सामने भी भगवान दौड़ाए थे हम, है ना, मुनि ऋषि भी देखे कहते नहीं आप अपने स्थिति में हैं धन्यता ठीक है। इसलिए भगवान उनको कहते तुम्हारे ही कल्याण हो। जत जत हाँ दिष्टिया, इसी कारण से तुम्हारी कल्याण। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं हो गया लोडी। सब लोग संतुष्ट हैं, इसका मतलब सब अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं, शिव जी परंपरा में हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।